जगत है ना, यहाँ पर माया का बिना आश्रय लिए नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि हम लोग माइक हैं, हमारे नेत्र भी माइक हैं, उनका वो जो अलौकिक अप्राकृत भाव है वो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, और उनको ये दिखलाना था, इसलिए सूरज माइक है, उनके किरणें भी माइक हैं, उनका आश्रय लेकर के उनमें से चली जा करके और फिर द्वारका में सप्तभामा के रूप में प्रकटित हुई। इसका ये तात्पर्य है वही नहीं, उनका वैभव प्रकाश है वो सप्तभामा जी। लौकिक लीलाएं सब ऐसे ही होती है, कुछ माइक आवरण उसके ऊपर में रहता है, नहीं तो लीला ही नहीं होगी। ये आवरण भी दो प्रकार का है, एक जोगमाया का आवरण होता है और एक महामाया का होता है। जोगमाया का आवरण होता है कृष्ण पर, उनके अवतारों पर, उनकी जो गोपियां इत्यादि, यशोदा मैया इत्यादि के ऊपर में, जो कृष्ण को परम जन ब्रह्म परम ब्रह्म ऐश्वर्य में है, किंतु वो सब माया जोग माया आच्छादित रखती है और ये साधारण लोग देख नहीं पाते। और कलश का जो मोहन हुआ है वो
महामाया।
इसी तरह से समय
तो उस समय तो राधा जी का एक प्रकाश रूप में वो वहां पे गई, क्योंकि वो अपने स्वरूप में तो वृंदावन में भी रही, तो उनका
वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाती, अपरकट रूप में है उनको कोई। इसलिए उनको एक विश्वानु नंदिनी है, एक
संजोगिनी,
संजोगिनी है,
एक वियोगिनी
और वियोगिनी है। नंदगांव में जो देखा जाता है वो वियोगिनी है, कुरुक्षेत्र में देखा जाता है वो संजोगिनी है, वृंदावन में है विश्वभानुनंदिनी का दो रूप है, एक प्रकट रूप है एक अप्रकट रूप है। कृष्ण लीला के समय में वो प्रकट होती हैं, कृष्ण लीला तक ध्यान हो गया बस, वो भी अप्रकट लीला में चली जाती है।
महाराज जी, रामचंद्र जी से बात हो रही थी तो कहते हैं कि जैसे जो जो मंजरियां होती हैं वो सारा राधा जी का सब भाव वो अनुभव कर सकती हैं, तो हम
जैसे कृष्ण राधा जी से मिले और मिलने से जो राधा जी को आनंद होता है, ऐसा ही आनंद वो अनुभव करती हैं कि कृष्ण मुझसे ही मिल रहे हैं, ये मंजरियों की विशेषता है। और ललिता विशाखा से भी जहां लज्जा अनुभव होगा, उनके सामने में वो लज्जा अनुभव नहीं होता। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी अकेले निकुंज वन में हैं, ललिता विशाखा जी पूछ करके जाएंगे और यहाँ वो रूप मंजरी इत्यादि पूछने की जरूरत वहां पर हैं, आएंगी जाएंगी।
तो गुरुदेव जैसे वो कह रहे थे कि जैसे हम लोग कहते हैं जो मादन अख्या महाभाव है वो केवल राधा जी ही उसका अनुभव कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता,
कृष्ण भी नहीं कर सकते।
तो वो कह रहे थे कि क्योंकि मंजरियां हर चीज का अनुभव कर सकते हैं जो राधा जी कर सकते हैं, तो ये भाव वो भी अनुभव कर सकते हैं, तो उसमें कुछ सामंजस्य नहीं हो पा रहा था कि जब राधा जी कर सकती है वो जगह मंजरियां उनका सारा भाव अनुभव,
मदनाख्य भाव कुछ अनुभव कर सकती है। मैं ये समझ सकता हूँ जो तुम बहुत बड़े हो, मैनेजर हो, ये काम करता हूँ, किंतु मैं नहीं हो सकता, वैसे राधा जी का वो जो भाव है अनुभव तो करती हैं,
तो उसको पूरा
किंतु वो अपने में नहीं ला सकती, ये बस
ये बात ठीक है। अब समझ आई, अभी तक वो मेरे को नहीं दिमाग उनके, ये अब ठीक है। तो उसको तत्व से उसको एक अनुभूति पूरी पूर्ण रूप से नहीं कर पाती, बट उसको एक थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करती है कि हाँ एक
अनुभव तो होता है, किंतु खुद उनमें वो भाव नहीं आता।
भाव नहीं आता।
जैसे राधा जी मिलन के समय लोग अनुभव करती हैं, तो विरह में भी ऐसे अनुभव करती हैं या नहीं?
हाँ।
तो जब ऐसे ही सेम एक ही अनुपात का हो, तो राधा जी ऐसे जब उद्धव कियारी में थी तड़प रही थी, मंजरी तड़प रही थी,
राधा के सुख में सुखी होती हैं, दुख में दुखी होती हैं, किंतु राधा जी जैसी दुखी होना
ये संभव मिलन भी
कुछ नहीं। अच्छा। उनके सुख में सुखी होती है,
अच्छा,
दुख में दुखी होती
है। तो उनके सुख और दुख में भी कुछ तारतम्य है, जो राधा जी का सुख और दुख बहुत
वो तो एक्सट्रीम पॉइंट है, उसमें कुछ तक होगा।
अच्छा,
नहीं तो विरह में भी वो लोग ऐसे विलाप करती।
भाजी ये पॉइंट पहले कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया था हम, कि अब समझ आया कि एक प्रोपोर्शन में अंतर है,
ये आप लोगों के लिए
क्वांटिटी में अंतर है।
ऐसे सब प्रश्नों को करने वाले भी जगत में बहुत कम है और समझने वाले भी कम है।
बिहाइंड यू
गुरुदेव, उत्तर देने वाले केवल आप ही हैं और कोई नहीं दे सकता ये प्रश्न का। शास्त्र में महाराज गुरुदेव आपकी कृपा से ही जगत में जो रस तत्व है, नहीं तो समाप्त ही हो जाता, नहीं तो हम लोग तो समझे कभी इन चीजों को समझ ही नहीं सकते थे। ये जो भाव है केवल आप ही की कृपा से सबको मिल रहा है,
कहीं नहीं है हमारे गोलियों मोटियों में भी है
नहीं है
कहीं। इसलिए कभी कभी वो कह देने के लिए बाध्य होते हैं कि महाराज जी का जो अभी प्रचार है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विचार के अनुसार नहीं है,
इसीलिए तो गलत है
क्योंकि समझ नहीं पाते,
समझ नहीं पाते।
यदि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सबको लिखा है, उस पर कीर्तन लिखे हैं, देखिए कितने ऊंचे थे, महान थे, जिसके भावों को लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। हमारे जितने अधिकांश भाव हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उन्हीं से नए नए विचार आते हैं। हम तब टहलने के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग भक्त लोग हमारा पीछा करते हैं, तो बीच में जहाँ पर हम
रुकते
हैं उनका वहाँ पर बैठ जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न
पूछने
बड़े अद्भुत अद्भुत।
महाजी वो ईमेल में आते हैं, बड़ा पढ़ने का आनंद आता है, विशेष करके जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना उसमें बड़ा आनंद आता है वो पढ़ने का।
वो भी आता है?
हाँ जी, सब आता है ईमेल में। अब देखिए अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सब कुछ रिकॉर्ड करके। महाजी इतने आपके तो से खजाना है, बस हम लोगों के पास यही है कि इस जीवन में हम आपका सब कुछ सुन सकें, कुछ समझ सकें जो आपकी पुस्तकें हैं। इतने हजारों प्रवचन आपके इंटरनेट पे हैं, किसी भी समय कहीं भी समय उनको डाउनलोड करके सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते
हैं। अभी नए नए सब
हर समय आते रहते हैं। अब तो आपकी वीडियो भी हर समय आती है इंटरनेट पे, तो
या पहले नहीं, पहले अभी तो क्लियर आती है,
क्लियर आती है।
ओह वो कौन है? ईशा,
ईशा प्रभु, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग लॉर्ड,
ईशा
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना करके भेजते हैं,
हमारे प्रचार में सहायक सब है।
हाँ जी,
ये सब लोग नहीं रहते, अधिक प्रचार नहीं होता, और इसी से जगत का कल्याण है, नहीं तो कलयुग ग्रास कर लेगा।
गुरुदेव, एक तो आपके लेक्चर पढ़ने के होते हैं और एक ऑडियो है, एक वीडियो है, मतलब तो कौन सा ज्यादा मोर इफेक्टिव है?
क्या मैं नहीं समझा?
वीडियो
कहते हैं है,
जैसे एक है आप बोल रहे हैं टेलीविजन में देख सकते हैं, और एक है
उसमें सुनते नहीं है,
सुनते भी है, और एक आपका
लेक्चर है, मतलब उसी को
लिखा हुआ आता है, वो
लिखा हुआ आता है।
बोलते लिखा हुआ पढ़ना अच्छा है या आप जो बोल रहे हैं सुनना अच्छा है?
वीडियो प्लस ऑडियो और ऑडियो माइनस,
वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन,
रिटन लेक्चर वर्बल
ऑल थ्री टुगेदर
सेम,
सेम सेम इफेक्टिवनेस।
लेक्चर आता है शायद उसको सुधार के कुछ
भाषा को थोड़ा सुधार कर
देते हैं, थोड़ा सा एडिट किया जाता है उसको,
उसको लिखा जाता है,
तो टाइपर हम लोगों के पास भेजते हैं,
तो इसलिए शायद वो अच्छा रहेगा। और इधर में हम सुनते हैं वीडियो, वो तो मेरा डायरेक्ट बोला हुआ है, उसका और अच्छा है।
हम लोग सब ये भवर रोग के मरीज हैं। जब अस्पताल में एडमिट होता है पहले उनको आईवी देते हैं, उसके बाद लिक्विड फॉर्म देते हैं, फिर टैबलेट फॉर्म देते हैं। तीनों मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है?
पर आईवी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है।
सबसे आईवी नहीं देंगे आपको, तब ये सब कोलैप्स हो जाएगा। जितना जरूरत है उतना आईवी देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। ऐसे कभी वो भी सुनना चाहिए, कभी दोनों ही चाहिए।
हमारे ये विश्व टूरों से लाखों लोगों का उपकार, लाखों से भी अधिक
पूरे दुनिया का।
गुरुदेव, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, जो कई लोगों से आपका पढ़ करके, अभी किसी का फोन आया, वो आप मिलने आना चाहते हैं, वो कह रहे मैं गुरुदेव को, शर्मा जी कोई हैं वृंदावन में, उनको कई बार मिला हूँ, वो ह्यूस्टन में आए हुए हैं, वो आपसे आके मिलना चाहते हैं। कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको सबको इतना प्रभाव पड़ रहा है।
हम लोगों के पास ईमेल आता है, कोई फोन भी करते हैं, अब कोई जानते ही नहीं।
मायामी में एयरपोर्ट में पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिस है,
होम सिक्योरिटी।
मायामी में
सिक्योरिटी का है,
वो टॉप है।
अच्छा,
उसने अपने आ करके हमारे
लेके खड़ा रहा, पहले मिले थे,
जब से घुसा तब से और मिनटों में सभी काम
करा था।
बोला आप जब भी अमेरिका में कहीं भी जाएंगे मुझे फोन कर देंगे, पहले सब जगह मेरा ये है, सबको
अमेरिका भर में जाऊंगा आपको। और बेजर में हम आपका क्लास सुन
लेंगे।
बोला
बता, अमेरिका में आप चाहिए, मैं बॉडीगार्ड सब जगह आपको दे सकता हूँ।
अच्छा, वेरी गुड।
मैंने कहा जब बॉडीगार्ड की जरूरत
माधव महाराज बॉडीगार्ड है।
नहीं तो ये तो है,
एक दिन मिलने के लिए आए थे,
बार भी कोई सुन लेता
है, व्हीलचेयर खुद खड़ा है, बोला मैं ले जाऊंगा। कुछ फटा सब
काम जल्दी जल्दी हो गया।
अभी तो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दिया है, पहला बैग के लिए $15 है, दूसरे बैग के लिए और 25 एक्स्ट्रा है, एक भी पैसा में नहीं देना पड़ा।
अमेरिकन एयरलाइन या यूनाइटेड?
अमेरिकन
जहाँ जाता हूँ डॉक्टर भी देखते हैं, तो इतना इतना फीस लेते, फिर वो कहते हम नहीं लेंगे।
भाई जी, ऐसे उन लोगों की भी सुकृति हो रही है, सेवा हो रही है उनके हाथों से भी।
आपकी थोड़ी कुछ सेवा होती है, उनका सौभाग्य है।
देखो, हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है, मैं साधारण से साधारण से साधारण व्यक्ति था। अधिक धनाढ्य घर में भी जन्म नहीं लिया, पढ़ा लिखा खूब भी नहीं, सब गुरु कृपा है, गुरु जी की सेवा निष्कपट से की, उसका फल ये है, आज विश्व सुनता है।
महाराज जी, आप बिल्कुल निष्कपट भाव से ही, बिना किसी इच्छा से सबको दे रहे हैं। बाकी लोग जो है यहाँ प्रचार करने आते हैं, वो धन की इच्छा से, अलग अलग इच्छाओं से आते हैं। आपके तो बिना, आप वास्तव में अपना हृदय का धन सबको दे रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के।
हम लोग पहले बार आए थे 96 में, तो हम न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में ठहरे हुए थे, भक्त के घर में, स्वामी जी के डिसाइपल है, तो शाम के समय 6-7 आदमी मिलने के लिए आए, तो गुरु जी को पूछा कि आप इंडिया से आए हैं, इंडिया तो बहुत पुअर है, वो तो पॉवर्टी अंडर पॉवर्टी लाइन जीते हैं, आप हमें क्या देंगे? तो गुरु जी बताया कि देखो, हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऐसे झोली फैल के आपके पास आ सकता है। मैं जब से जन्मा हूँ मैं ऐसे सीखा, ऐसे नहीं सीखा अभी तक, तो मैं देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया। बोला आप क्या देंगे क्या? तो गुरु जी ने बताया, अच्छा सपोज एक तालाब है, उसमें कंकर का फेंक, एक टुकड़ा पत्थर फेंक दे, क्या होगा? तो कुछ रिपल होगा, बंद हो जाएगा। गुरु जी बोले नहीं, बंद नहीं होगा। तो वो लोग पूछा क्या होगा, गुरु जी ने बताया रिपल होगा, ये समस्त पॉन्ड के छोटा भी हो, समस्त ओर छोर को स्पर्श करेगा, फिर धीरे धीरे शांत होगा। जब तक समस्त ओर छोर को स्पर्श नहीं करेगा, शांत हो नहीं सकता है। ऐसे ही हम जो आजकल बेतार है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये क्या है? हवा में तरंगे हैं, वो शब्द समस्त पृथ्वी ओर से स्पर्श कर रहा है, आप मैसेज से कैच कर रहे हैं। ऐसे हम जो हरिनाम संकीर्तन करेंगे या हरि कथा बोलेंगे, पृथ्वी के समस्त ओर छोर को स्पर्श करेगा। इस समय दुनिया के सबसे बड़ा जो ये प्रॉब्लम है साउंड पॉल्यूशन, वो सबसाइड होगा। तो देखने लगे, बोला आपके साइंटिस्ट है? गुरुजी को पूछा, नहीं मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण आदमी हूँ। मैं गुरुजी की सेवा की जो सुना उनसे और जो मैं भजन का अनुभव किया वही बता रहा हूँ। तो बोले बिना साइंटिस्ट ऐसे उदाहरण दे ही नहीं सकते हैं। तो गुरुजी बोले नहीं साइंटिस्ट मैं हूँ ही नहीं, मैं तो बताया जो मैं भजन का अनुभव किया गुरुजी कृपा वही बता रहा हूँ। तो बोले नहीं आप जरूर साइंटिस्ट है। फिर भजन गुरुजी आप साइंटिस्ट है? तो लोग हंस पड़े। बोला हम सातों के साथ साइंटिस्ट है, आपके बारे में सुना था तो आपको परीक्षा करने के लिए आया था, आप क्या प्रचार करेंगे। तो अब तो हमें खुशी हुई है कि आप दुनिया में बेधड़क प्रचार कर सकते हैं, आपका सामना कोई नहीं कर सकते। तो गुजर आप कैसे कह सकते हैं? तो बताइए, साउंड पोल्यूशन के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं दुनिया में, हम बहुत जगह घुमा, इंडिया भी गए हम लोग, जाके विभिन्न जगह बहुत कुछ साउंड को रिकॉर्ड किया। और इंडिया में देखा लोग घंटों तक भजन कर रहे हैं, कोई उनको थकावट भी नहीं, ये नहीं, हम लोग तो बाकी कैसे करते हैं। फिर जितने तरह के साउंड है, ये मशीन का साउंड है, जानवर का साउंड है, चिड़िया का साउंड है, ये कीर्तन का साउंड है, सबका हम लेबोरेटरी में टेस्ट बजाया। जब हम इसमें भजन कीर्तन को बजाते हैं तो साउंड प्रदूषण घटता है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा प्रचार होगा। 96 में बताया था पहले, जयराम हाउस दैट टाइम
न्यूयॉर्क में गए थे महाराज,
दो तीन बार सबसे पहले ह्यूस्टन आए थे, उसके बाद गए थे।
तो बता ये सब खुद ये किया तब।
नवद्वीप का मठ कितना सुंदर बना है और उसमें कितना हरिनाम,
अभी तो बाकी है।
नवद्वीप का मठ तो बहुत
कहीं विश्व ब्रह्मांड में नहीं है ऐसा,
अभी तो भी काफी बाकी है काम, अभी 2-3 साल लगेगा कम्प्लीट करने में।
ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव शास्त्रों में बहुत वर्णन किया, नाना प्रकार के अत्याचार बढ़ेंगे, पॉल्यूशन होगा, लोगों का स्वभाव एकदम बदल जाएगा, माता पिता को कोई नहीं देखेगा और स्त्रियों का चरित्र पुरुषों का चरित्र कैसे बदल जाए, साधु संतों का भी चित्त ऐसा हो जाएगा, बड़ी वैभव से रहेंगे, भोग भोगोंगे, त्याग वैराग्य नहीं होगा, जितना अच्छा पोशाक और ये सब रखेंगे उतना ही उनका आदर होगा, जितना झूठ बोलेंगे सब साधु पहनेंगे। किंतु ये नाम प्रचार हो रहा है भगवान का और हरि कथा विश्व में कुछ प्रचार हो रहा है, इसलिए कलयुग का प्रभाव है वो तबाह हुआ है।
महाराज जी, कलयुग में हर कलयुग में से इस कलयुग में तो महाप्रभु स्वयं आए, इसके बाद सत्ययुग आएगा, जब दोबारा कलयुग आएगा तो हर कलयुग में हरि नाम जो है संकीर्तन धर्म है,
नहीं
सिर्फ इसी कलयुग में,
एक ब्रह्मा के कल्प में एक बार जब महाप्रभु आएंगे तभी होगा।
लेकिन कलयुग का धर्म तो हरि नाम संकीर्तन है ना,
होने से भी इतना नहीं होगा जितना,
हाँ इस समय जो वैकुंठ प्रेम तक मिलेगा, वैकुंठ गति।
एक महानिधि स्वामी, उनके कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो असम में दीक्षा भी लेना चाहता है, स्थानु साउथ इंडियन है, तमिलनाडु का है, तो बहुत सालों से वो मतलब कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे, तो उसने एक मुझे पुस्तक में दिखाया कि उसमें लिखा हुआ था कि हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं लेकिन उनका संपूर्ण प्रकाश नहीं होता।
नहीं नहीं,
तो उन महान
कोई इतना भी नहीं,
एक बार केवल आएंगे, एक दिन में
एक ही बार आएंगे ना, तो हजार
भी एक बार आएंगे, भगवान राम भी एक बार आएंगे,
महाकृष्ण भी आएंगे,
अच्छा वो भी एक ही बार आएंगे, तो हजार का जो साइकिल होती है 12 घंटे की, उसमें एक ही बार आएंगे,
एक ही बार,
अच्छा तो वो यही वाला कलयुग, इसी
पर कृष्ण भी आए
और इसी पहले
धन्य कलयुग कहा गया,
नहीं राम इससे पहले, और बहुत पहले
नहीं,
तो इस कलयुग में ये तो चैतन्य
महाप्रभु इस पे आए
अभी लोग
पहले आए थे
अभी तो श्रीलंका अधिकांश लोग घर में ठाकुर जी रखते हैं, कोई कृष्ण को रखते हैं, कोई राम को रखते हैं, कोई नृसिंह देव जी को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हरिनाम भी करते हैं, भले ही दीक्षा न ले किंतु जैसे तैसे उनको भक्ति है। ये सब कलयुग इसका प्रभाव है महाप्रभु जी का।
तो हम लोगों का तो फिर बहुत ही गुरुदेव सौभाग्य कि इसी कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ, क्योंकि इसके बाद तो
दूसरे कलयुगों में ये महाप्रभु का जो भाव है रागानुगा भक्ति
ये नहीं होगा,
इसका प्रचार नहीं।
सॉरी
कलयुग में लिखा है जे लाखों अवगुण हैं, किंतु यही एक अवगुण है कि भगवान का एक बार भी नाम लेकर के भवसागर
कले दुसनिधि राजन जस्य एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधन परम व्रजेत।
तो गुरुदेव जैसे हम लोगों की तो हम लोग तो इतने पतित हैं, हम लोगों के पूर्ण भजन सिद्ध नहीं हुआ, फिर जन्म यदि हुआ तो इसी ब्रह्मांड में होगा या किसी दूसरे ब्रह्मांड, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो अब महाप्रभु की लीला
लिखा है। यदि भगवत भक्ति आरंभ कर दिया तो फिर जब तक कि कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो सुचिनांग
सीमतांग
गृहे धनी घर में धार्मिक घर में पवित्र घर में वो जन्म ग्रहण करेगा और फिर जहाँ से पहले जो आरंभ हुआ था वहीं से आरंभ करके बढ़ेगा, फिर भी इस जन्म में पूरा प्रेम तक नहीं पाया तो फिर कहीं मनुष्य जन्म में यही भारत वर्ष में ही वृंदावन इत्यादि के निकट या वृंदावन में होगा।
नहीं विष्णु का प्रश्न है इसी ब्रह्मांड में जन्म होगा कि दूसरे ब्रह्मांड में,
अब ये कृष्ण या उनकी जोग माया जैसे समझेगी जहाँ पर उसको उस सुविधा होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिसे उसका जन्म ऐसे होगा जैसे यहाँ महाप्रभु के जन्म के 550 वर्ष पीछे पहले वो हुआ।
हाँ जी
अब तुम्हारा जन्म होगा जबकि रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के युग वाला जहाँ अभी हो रहा है वहाँ होगा, और फिर वहाँ से होने के बाद में जब महाप्रभु जी प्रकटित हैं उस समय होगा।
अच्छा तो गुरुदेव फिर वो तो दूसरा ही ब्रह्मांड होगा ना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो अब दोबारा वो लीला चल नहीं रही, क्योंकि भागवत महाराज कह रहे थे कि एक जीव जब तक कृष्ण लीला तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसी उसी ब्रह्मांड में रहता, उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तो
उस
ब्रह्मांड में जा सकते हैं
कहीं पर ऐसा होगा।
तो गुरुदेव हमें तो रूप गोस्वामी जी के जहाँ आप होंगे वहीं पे पहुंच जाए, वही ठीक है।
आप ऐसे हर जल में रोएगी।
हाँ ठीक है
गुरुदेव, हमें तो आपके साथ ही रहना है।
खेल कथम पैसा हजम। ये मिठाई बड़ी महंगी पड़ रही है, तो महंगी पर तो पैसा थले थे देना पड़ रहा है थोड़ी।
इंडिया से इसको क्या क्या ले आना?
नहीं ये तो घर में बनाई,
ये तो बनाई किंतु एक बार वो लाई थी सोन पापड़ी ले आई।
गजक गजक
गजक ले
आई,
पापड़ ले आई और
बढ़िया बढ़िया भी लाया आपके लिए।
बढ़िया बढ़िया ही
है, आप भी बनाएंगे
बनाना।
हाँ
तुम्हारी आज दाल बड़ी अच्छी बनी।
आपने बनाई थी दाल?
और वो कौन बनाया था मूंग का?
कलावती जी, विनोदिनी पुंदरी बनाई थी।
वो तो बहुत टेस्टफुल हुई।
आरती दीदी,
आरती दीदी का भिंडी है, करेला है और बैगन भरता है।
सबको छोड़ करके चोखा खाया।
चोखा क्या होता है?
बैंगन का भरता।
बैंगन का भरता
चोखा बोलते।
चोखा, अच्छा अच्छा चोखा। आज हमारे घर में अभी टिंडोरा पिछले साल बोया था, नहीं निकला। इस आज मैंने इतना टिंडोरा तोड़ा आज घर में, और बिल्कुल परमल के साइज का गुरुदेव, बड़ा बड़ा। तो कल बना के लाएंगे, इतना काफी सारा हो गया परमल।
अब नहीं
तो प्रोग्राम कोई नहीं है ना
गुरुदेव? शनिवार को,
शनिवार को प्रोग्राम।
शनिवार को हमने ब्रजनाथ प्रभु से इनसे पूछा था कि कितने कार्यक्रम रखें, तो उन्होंने कहा था बस एक ही रखना, और एक यदि घर में रख सको। तो शनिवार को बड़ा कार्यक्रम है। पहले हम लोगों ने सोचा कहीं बाहर बड़े हॉल में करें, लेकिन फिर यहीं पे जहाँ पे अपना मठ का हॉल है, जहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम होता है, उसका बड़ा अच्छा बड़ा है, अच्छा उसको काफी अच्छा बना लिया है, तो वहाँ पे कम से कम 125-150 लोग आ सकते। अभी नया
अधिक नहीं लोग,
उसमें इससे अधिक समा नहीं सकते,
तो आ भी नहीं सकते।
तो हम लोग तो उसमें करेंगे, और संडे को, रविवार को शाम को इनके घर पे इन्होंने कुछ यहाँ के स्पेशल लोगों को बुलाया।
शनिवार को वहाँ होगा,
शनिवार को वहाँ पे, और रविवार को यहाँ पे।
रविवार को कितने
यहाँ से? सोमवार को निकलेंगे, सोमवार को निकलेंगे,
सोमवार को सुबह डॉक्टर गए, फिर वहाँ से हमारे घर में
तुम्हारे एक दिन इनके घर भी जाना है,
काशी सैटरडे
की जा करके घूम आएंगे।
गुरुदेव आपको कोई तकलीफ ना हो, आपका
नहीं, एक बार जाएंगे जा करके देख आएंगे।
गुरुदेव उसका
प्रति बार
मॉर्निंग वॉक के बाद होकर
एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए भी हुआ।
गुरुदेव केशव का अनुप्राशन
किसका?
केशव का,
ठीक है, उसी दिन करना।
हाँ जी,
कुछ लेना जी, हम जब इसके घर में जाएंगे ना, इसके घर से निकट पड़ेगा, इसीलिए।
गुरुदेव हमारी इंडिया से इनके भाई और फैमिली आ रही है मंगलवार को।
मंगलवार को आ रहे हैं
दिल्ली से,
दिल्ली से सारी फैमिली
आ रही है। वो मंगलवार को आएंगे, तो बुध या वीरवार को कर सकते हैं, आपको जैसे भी कन्वीनियंट।
मंगलवार को कब?
मंगलवार को तो आ रहे हैं महाराज जी,
तो दूसरे दिन
है?
दूसरा दिन क्या है?
बुधवार,
बुधवार और गुरुवार,
तो बुधवार को ही रख लेना।
हाँ। जब भी आपको ठीक लगे,
जब भी ठीक लगे।
दोपहर को जाएंगे, फिर वहाँ होकर के फिर कुछ रख देना, कुछ ले लेना।
महाराज जी वो कह रहे उसके घर कब आएंगे?
मेरा कोई घर ही नहीं है गुरुदेव।
तो भाई तुमने बोला ना मेरा घर,
मेरा घर कब आ रहे हैं गुरुदेव? तो पहले घर बनेगा ना, इसका मतलब
यहाँ पर रहेगा।
कहाँ पे?
अमेरिका में।
जहाँ आप बोलेंगे गुरुदेव वहाँ रहूंगा मैं, अंटार्कटिका।
मैंने तो कहा था कि पहले जो ब्रह्मचारी बन करके हमारे साथ में रहो, क्या हुआ?
अब तुम कहो गुरुदेव, अब आपको गुरुदेव मेरी फीस दे दो।
ब्रह्मचारी एक ब्रह्मचारी, वो एक ब्रह्मचारी, दो हो गए।
अब गुरुदेव मैं आज यही बात कर रहा था, आप मेरे एम्प्लॉयर बन जाओ एमबीए के बाद, और आप मेरी फीस माफ कर दो, तो उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे गुरुदेव ये सब बेकार है, वैसे चाहे जितना मर्जी कमा लो, कुछ भी कर लो, सब ये बेकार है। समय के बाद इतना तो समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा।
यही तो कहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उसमें एक अग्नित्र राजा थे।
अग्नित्र
बिना हो गए।
ओ, मनु महाराज के दो पुत्र थे, एक
उत्तानपाद
और एक प्रियव्रत।
प्रियव्रत
उन्हीं के वंश में। उन्होंने पृथ्वी का करोड़ों वर्ष तक राज्य किया। एक दिन वो वन में गए,
प्रियव्रत
नहीं उत्तम अग्निद्र
अच्छा अग्निद्र
वो गए देखा एक बड़ी सुंदरी अस्परा वहां है अर्धनग्न अवस्था हाथों में फूल बड़ा
उछाल
ऐसे कर रही है हवा में वस्त्र उड़ रहे हैं ब्रह्मा जी ने उसको भेजा था जाओ उनके पास में तो भाई उसको देख करके एकदम पागल हो गए हे मित्र आप कहां से पधारे आप कौन हैं तो कहते तुम कहां से आई हो मैंने दिमाग का बैलेंस ठीक नहीं रहा ओ तुम्हारे मुख इतने सुंदर हैं जो जब बोलती हो तो मधु गिरता है आकेश कलाप कैसे सुंदर अद्भुत है आंखें तो मालूम होता है जैसे ये भगवान ने ही एक ऐसी निराली तुमको बनाया है प्रत्येक अंग का वर्णन करने लगे लिखा है भागवत में वो जानते थे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्त्रियों को कैसे मनाया जाता है कैसे प्रसन्न किया जाता है इसी तरह से उसको ऐसे उसकी प्रशंसा की तो वो बोली कि मैं अस्परा हूं ब्रह्मा के आदेश से आया हूं उन्हें शायद यही बात है ब्रह्मा ने इसीलिए तुम्हारी सृष्टि की जो हमारे साथ में आओगी रहोगी और हमारा तो एकदम जीवन ही बन जाएगा इस प्रकार से वो उन्होंने अपने राजधानी में ले जाकर के उससे शादी कर ली करोड़ों वर्षों तक तो उसके साथ में रहे भोगों में लगे रहे अंत में उनको बैराग्य आया है मैंने क्या किया मुझे धिक्कार है मुझे धिक्कार है मैंने अपना जीवन अमूल्य जीवन जो भगवान का भजन करने का था नष्ट कर दिया साथ में मेरा क्या जाएगा संसारिक तो दुख भोग नहीं पड़ेंगे अभी युवावस्था में नहीं समझ रहे किंतु वृद्ध होने पर क्या होगा जब लठिया के सहारे भी नहीं चल पाओगे कोई खाना हजम नहीं होगा और मरोगे तो तुम्हारा कुटुंब स्त्री पुत्र परिवार बेटा धन संपत्ति कुछ भी नहीं जाएगा एक पैसा भी एक पेनी फॉर्डिंग भी कुछ नहीं शरीर ही नहीं जाएगा उस समय क्या होगा फिर कहां जाना है पशु पक्षी कीट पतंग क्या होगा सुकर कुकर गधे होंगे भी को हम नहीं जानते हैं ओह मैंने बहुत जीवन बर्बाद किया भगवान ने मनुष्य जीवन दिया था केवल भगवान का भजन करने के लिए दिया था अर्थ रोजगार करके सब इतना बड़ा बनाएंगे क्या लेकर के जाएगा मूर्ख गधे जैसा फिर उनको वैराग्य हो गया सब छोड़ छाड़ करके फिर चले गए भजन करने के लिए ये हम लोगों को भी समझना है एक दिन बुढ़ापा आएगा एक दिन मरना पड़ेगा कुछ भी साथ नहीं जाएगा अकल बुद्धि जो कुछ है सब गुम हो जाएगी इसलिए अभी से चेष्टा करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करना कोई अधिक बात नहीं है बेटे को अपने पिता को प्रसन्न करने में कोई भी प्रयास नहीं बस पिताजी मैं आपका बेटा हूं की गोदी में बैठ गया बस उसी तरह से कृष्ण को कहना है हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है और उनके भजन के अनुकूल जो हो बस वही ग्रहण करे प्रतिकूल कुछ नहीं विषयों का संग न करे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह से भागवत में बड़े बड़े सुंदर उपाख्यान हैं, बहुत सुंदर उपाख्यान, 9 से 1 से लेकर के 9 अध्याय तक,
9 स्कंद
तक। कृष्ण की चरित्र तो नहीं है, किंतु बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चरित्र के द्वारा संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और भक्तों का जैसा प्रहलाद महाराज का, अम्बरीश का जो चरित्र है सुन करके वैसे ही प्रैक्टिस करके दशम स्कंद में पहुंच जाए। इसलिए ये सब, ऐसा पृथ्वी में कोई ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, रामचरितमानस, उसका जितना भी सुंदर भाव है भागवत से
भागवत श्लोक का हिंदी अनुवाद,
जो जो श्लोक है देखते हैं कि उनका अनुवाद है तुलसीदास
चौपाई का अनुवाद।
सब ग्रंथों के मास्टर थे वो तुलसीदास।
था के बाद देखो
ठीक है, समय कट गया, नहीं तो नहीं कट।
अब तो कट गया ना, अब तो बड़ा बड़ा जानने
कुछ बातें बातें अभी कौन मालूम।
गुरुदेव तुलसीदास जी भी किसी के अवतार थे क्या?
अवतार है माने भक्त थे, जगत भगवान की इच्छा से जगत में आए हैं, नहीं तो एक जन्म में आदमी एक इतना उन्नत नहीं हो सकता, एक जन्म के नहीं। हनुमान जी की कृपा पा ली, हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, रामचंद्र जी ने भी उनको लक्ष्मण के साथ में दर्शन दिए, उनके भजन कुटी के चारों तरफ में पहरा देते थे, साधारण बात। साधु किसको कहते हैं? 100 माने 7। यदि कोई उनके साथ में हो गया, उनकी कथाओं को सुनकर उसका हो,
उनके हृदय को धुला देंगे,
बस संसार उसका दूर होकर,
तभी लोग साधुओं से दूर भागते हैं। सच्चे साधुओं से तभी कथा के लिए बुलाना हो तो लोगों के इतना उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे कोई एक्टर आएगा फिल्म का तो लोगों की लाइनें लगी होंगी।
ठीक है, हरे कृष्ण। आप जाइए, तुम्हारा घर बैकुंठ से बढ़ करके है।
आप आ गए इसलिए बैकुंठ बन गया।
तुम लोगों ने हमको खींच करके बांध दिया है। एक तुमने डोरी से मुझे बांधा, वो डोरी क्या? पिता की डोरी में बांध दिया, जो पिताजी हमारे हैं।
वास्तविक पिताजी तो आप ही हैं।
इन लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? बहुत जाओ जाओ गोदी में लो।
हमारे माता पिता,
अरे भैया रो मत, केशव जी रोइए मत, हाँ? अपनी दादी की गोदी में बैठ करके खूब आनंद कीजिए।
भागवत हम पढ़ता है महाराज जी मेरे साथ।
करोगे?
जो बनाएगी वही हम लोग।
जो स्पेशल जानती हो बताओ।
लौकी का सूप ले लेती
हूँ। लौकी का सूप बनाएगी बता
दीजिए। टमाटर
टमाटर टमाटर कल मैं करेला दाल बनाऊंगी।
हमारा
आज तो बहुत अच्छा रहा कर
भरता अच्छा लगा भुज्जी तो नहीं
मिला नहीं हम लोगों को भी किसी को कहा
भिंडी ठीक थी भिंडी
बहुत सारा ये
विदेशी ब्रोथ वेरी नाइस सब्जी
आपको देख के हृदय में इतना
बेटी है।
हाँ जी बेटी बेटा दोनों जुड़वा है।
दोनों जुड़वा है।
हाँ जी
आप भूल गए आप जानते हैं छोटे से आते थे
अभी ठाक गया इतनी जल्दीबाजी मत करो। वैसे मैंने ले लिया घर में भी है तो मेरी भूल
हम लोग आ सकते
हैं
और हक पीता है
वो नहीं उसके भाई
उनको बोलता है कि उनको पैसे
है उनको क्या होता है इसके भाई को
गाड़ी लेने के लिए या किसी और चीज के लिए कभी और कमाते हैं लेकिन फिर जब मैं कभी डिलीवरी के पास आती हूँ पूछाती हूँ तो फिर लड़ाई झगड़ने में बोलता है कि डिलीवरी को क्यों कर रही है हाँ जी।